अध्याय 57 सरकारी शासनकर्ताओं तथा कानूनों से। हमारा संबंध सरकारी अधिकारियों की ओर विश्वासियों का कैसा भाव होना चाहिए, उसकी रूपरेखा प्रेरित ने स्पष्टता से खींच दी है। प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के लिए कि वो सब पर प्रधान है, और हाकिमों के, क्योंकि वे कुकर्मियों के दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम भले काम करने से निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो और अपने आप को स्वतंत्र जानो पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। सबका आदर, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। पहला पत्रस 2:17। हमारे ऊपर शासनकर्ता हैं और लोगों पर शासन करने के हेतु नियम व कानून हैं। यदि नियम न होते तो संसार की दशा इससे भी बुरी होती जो अब है। कुछ नियम अच्छे हैं, अन्य बुरे हैं। बुरे नियम बढ़ते जा रहे हैं और हम और भी तंग जगह में लाए जाएंगे, परंतु परमेश्वर अपने लोगों को दृढ़ व अटल रहने में और उसके वचन के नियमों पर चलने में सहायता करेगा। मैंने देखा कि हर हालत में हमारा कर्तव्य है कि अपने देश के नियमों का तब तक पालन करें जब तक वे उस उच्च नियम से संघर्ष नहीं करते जिसे परमेश्वर ने सीने पर्वत से ऊंची आवाज से पुकारा और तत्पश्चात उसको अपनी ही अंगुली से पत्थर पर कंधा कर दिया। मैं अपनी व्यवस्था को उनके मन में डालूंगा और उसे उनके हृदय में लिखूंगा, और मैं उनका ईश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। जिसके हृदय में परमेश्वर की व्यवस्था लिखी है वो मानव के हुक्म की बनिस्बत परमेश्वर की आज्ञा मानेगा और शीघ्र ही सारे लोगों की अवज्ञा करेगा, परंतु परमेश्वर की व्यवस्था मानने से किंचित भी न हटेगा। सत्य की प्रेरणा से सिखाए गए परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन यापन के लिए शुद्ध अंतकरण द्वारा नेतृत्व किए हुए परमेश्वर के लोग उनके हृदय में लिखी व्यवस्था को एकमात्र अधिकार के रूप में स्वीकार करेंगे अथवा मानने को राजी होंगे। ईश्वरीय व्यवस्था की विद्वता व अधिकार सर्वोच्च हैं। जिस शासनाधीन यीशु रहता था वो भ्रष्ट और निर्दयी था। हर तरफ अन्याय ही अन्याय था, लूट, खसोट, हठधर्मी और कठोर अंधेर था। तो त्राणकर्ता ने कोई राजनीतिक सुधार नहीं किया, उसने राष्ट्रीय अन्याय पर कोई आक्रमण नहीं किया, न राष्ट्रीय शत्रुओं की निंदा ही की। उसने अधिकारियों अथवा राज्य शासन वालों के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं किया। जो हमारा नमूना था वो पार्थिव शासन से पृथक रहा। बार बार यीशु से विनती की गई कि वो कानूनी तथा राजनीतिक प्रश्नों को हल करे, परंतु उसने सांसारिक मामलों में हस्तक्षेप करने से इनकार किया। मसीह हमारी दुनिया में आध्यात्मिक धार्मिकता के राज्य का, जिसे वो स्थापन करने आया था, सरदार बनके आया। उसकी शिक्षा ने उन उच्च करने वाले और पवित्र करने वाले सिद्धांतों को नष्ट कर दिया जो उसके राज्य को संभाले हुए हैं। उसने प्रत्यक्ष कर दिया कि न्याय और प्रेम यहोवा के राज्य की नियंत्रण करने वाली शक्तियां हैं। जासूस उसके पास प्रत्यक्ष में निष्कपट हृदय से आए, मानो वे अपने कर्तव्य के बारे में जानना चाहते थे। उन्होंने कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि आप यथार्थ कहते और सिखाते हैं और पक्षपात नहीं करते हैं, परंतु ईश्वर का मार्ग सत्यता से बताते हैं। क्या कैसर को कर देना हमें उचित है अथवा नहीं? मसीह का उत्तर गोलमोल नहीं था, परंतु प्रश्न का खरा उत्तर था। अपने हाथ में एक रोमी सिक्का लिया जिस पर कैसर का नाम तथा मूर्ति छपी थी, और घोषणा की, क्योंकि वे रोमी राज्य के संरक्षण में रहते थे इसलिए तब तक उन्हें उस शासन को सहारा देना चाहिए जब तक यह श्रेष्ठ कर्तव्य कर्म में बाधा न डाले। जब फरीसियों ने मसीह का उत्तर सुना तो यह सुनके आचंबित हुए और छोड़ के चले गए। उसने उनके कपट और कल्पना की निंदा की, और ऐसा करने में उसने एक महान सिद्धांत को स्पष्ट किया, ऐसा सिद्धांत जिससे मानवीय कर्तव्य की सीमा सरकार की ओर और परमेश्वर की ओर स्पष्ट प्रदर्शित होती है। शपथ लेना।
मैंने देखा कि कुछ परमेश्वर के लोगों ने क्रिया खाने के बारे में बड़ी भूल की है, और शैतान ने इससे फायदा उठाकर उनको सताना चाहा और उनसे परमेश्वर का रुपया छीनना चाहा। मैंने देखा कि हमारे प्रभु के वचन की, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि कभी शपथ न खाना,
न तो स्वर्ग की, क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है, परंतु तुम्हारी बात हां की हां या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। मत्ती 5:34-37। ये बात आम बातचीत की ओर संकेत करती है। कुछ लोग अपनी बातचीत में अतिशयोक्ति करते हैं, कुछ अपने जीवन की क्रिया खाते हैं, दूसरे अपने सिर की शपथ खाते हैं। कुछ मामले की यथार्थता को बतलाने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी को गवाह ठहराते हैं। कुछ कहते हैं कि यदि उनकी बात में कुछ झूठ पाया जाए तो परमेश्वर उनको मार डाले। इसी प्रकार की आम क्रिया के बारे में यीशु अपने शिष्यों को चेतावनी दे रहा है। मैंने देखा कि परमेश्वर को देश के कानूनों से तब तक सरोकार है जब तक यीशु स्वर्गीय मंदिर में है। शासनकर्ताओं तथा लोगों द्वारा परमेश्वर की रोकने वाली आत्मा महसूस की जाएगी, परंतु शैतान अधिकांश रूप में संसार के जनसाधारण पर नियंत्रण रखता है, और यदि देश में कानून न होते तो हमें बड़ा दुख भोगना पड़ता। मुझे बतलाया गया कि जब वस्तुतः आवश्यक हो तो और नियमानुकूल परमेश्वर की संतान को साक्षी देनी पड़े तो वे परमेश्वर को गवाह ठहरावें कि जो कुछ वे कह रहे हैं सत्य, बिल्कुल सत्य है। इसमें परमेश्वर की अवज्ञा नहीं हो रही है। मैंने देखा यदि पृथ्वी पर कोई उचित से क्रियाधीन शपथ खा सकता है तो वो मसीही पुरुष है। वो परमेश्वर के चेहरे की रोशनी में रहता है, उसी की शक्ति से वो मजबूत होता है, और जब महत्वपूर्ण विषय नीति के अनुसार हो तो मसीही पुरुष जैसा कोई व्यक्ति नहीं है जो परमेश्वर से कुशल रीति से विनती कर सकता है। मुझे दूत ने इस बात पर विचारने की आज्ञा दी कि परमेश्वर अपने स्वयं की सौगंध खाता है। राजनीतिक संबंध में उत्तेजना। जो अध्यापक हमारी मंडलियों तथा स्कूलों से धर्म पुस्तक सिखाते हैं, वे अपने को राजनैतिक व्यक्तियों अथवा कार्रवाई के प्रति अथवा विरुद्ध निर्णय देने को स्वतंत्र न समझें, क्योंकि ऐसा करने से वे दूसरे के मन को उभारते हैं और प्रत्येक की अपनी ही दिलपसंद कल्पना की पैरवी करने में नेतृत्व करते हैं। वर्तमान सत्य के इकरार करने वालों में कुछ हैं जो इस प्रकार अपनी भावनाओं तथा राजनैतिक ग्राह्यता को व्यक्त करने की यहां तक उकसाए जाते हैं कि कलीसिया में भी फूट पड़ जाती हैं। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग राजनैतिक प्रश्नों को गाड़ दें। इस प्रसंग में खामोशी ही उत्तम है। मसीह अपने अनुयायियों को बुलाहट देता है कि वे खालिस सुसमाचार के सिद्धांतों में, जो परमेश्वर के वचन में स्पष्टता से दर्शाए गए हैं, संयुक्त हों। हम सुरक्षा की भावना लेकर राजनैतिक दलों के लिए मत नहीं दे सकते, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम किसके लिए मत दे रहे हैं। हम किसी राजनैतिक योजना में सुरक्षा की भावना लेकर भाग नहीं ले सकते। जो वास्तविक मसीही हैं वे असली दाखलता की डालियां होंगी और अंगूर ही का फल लाएंगी। वे मेल मिलाप से मसीही संगत में कार्य करेंगे। वे राजनैतिक बिल्ला नहीं किंतु मसीह का बिल्ला लगाएंगे। फिर हम क्या करें? राजनैतिक प्रश्नों को अलग ही रहने दें। एक बड़ा अंगूरिस्तान है जिसमें पौधे लगाने हैं, परंतु जब मसीही लोग के बीच काम कर रहे हैं तो उन्हें सांसारिक लोगों की भांति नहीं दिखाई देना चाहिए। उनको अपने समय में राजनैतिक विषयों पर न तो बातचीत करनी चाहिए और न हिस्सा लेना चाहिए। ऐसा करने से वे शत्रु को मौका देते हैं कि अंदर आकर भिन्नता और विरोध पैदा करे। परमेश्वर की संतान अपने को राजनीति से पृथक रखें। किसी राजनैतिक झगड़े में भाग न लें। दुनिया से अलग रहो और कलीसिया स्कूल में झगड़े तथा गड़बड़ी के ख्याल न लगाएं। फूट एक नैतिक विष है जिसे स्वार्थी लोग अपनी शरीर में लेते हैं। असावधान वक्तव्य देने में खतरा। लोगों को सिखलाइए कि सारी बातों में अपने देश में नियमों के अनुकूल चलें, जबकि वे परमेश्वर की व्यवस्था के संग संग संघर्ष में आए बिना ऐसा कर सकें।
कुछ हमारे भाइयों ने ऐसी बातें कहीं और लिखी जिनसे यह अर्थ निकाला गया कि वे सरकार और कानून का विरोध करते हैं। इस प्रकार गलत फहमी के लिए द्वार खोलना एक भूल है। राज्य के शासकों द्वारा जो कुछ किया जाता है उसकी निरंतर आलोचना करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। हमारा काम नहीं कि व्यक्तियों तथा संस्थाओं पर आक्रमण करें। हमें अति सावधान होना चाहिए, कहीं ऐसा ख्याल न हो कि हम सरकारी अधिकारियों का विरोध कर रहे हैं। यह सत्य है कि हमारा युद्ध आक्रामक है,
परंतु हमारे हथियार वही होने चाहिए जो साधारण प्रभु यहोवा यूं कहता है। हमारा काम संप्रदाय को परमेश्वर के बड़े दिन में खड़े रहने को तैयार करने का है। हमें ऐसी दिशा की ओर नहीं लौटना चाहिए जिससे उनके साथ, जो हमारे दीन व मत के नहीं हैं, वाद विवाद व द्वेष पैदा हो जाए। वो समय आएगा जब हमारे भाइयों द्वारा असावधानी से व्यक्त किए व लिखे गए निंदनीय वक्तव्य हमारे शत्रुओं द्वारा हमको निरादर करने की खातिर प्रयोग किए जाएंगे। ये केवल वक्ताओं का अपमान करने के हेतु प्रयोग में नहीं लाए जाएंगे, किंतु एडवेंटिस्ट कलीसिया पर ये अभियोग लगाया। हम पर अभियोग लगाने वाले कहेंगे कि अमुक दिन में हमारे किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने इस सरकार के कानूनों के विरुद्ध यों कहा था। बहुत से लोग आश्चर्यचकित होंगे जब वे देखेंगे कि कितनी बातें दिल में रखी गईं और याद की गईं, जो हमारे विरोधियों को वाद विवाद करने का विषय बनाई गईं। बहुत से लोग ये सुनकर स्तंभित हो जाएंगे कि उनके शब्दों का अर्थ ऐसा खींचतान किया गया है जिनका उन्होंने कभी विचार भी नहीं किया था। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को हर समय हर हालत में बड़ी सावधानी के साथ मुंह से शब्द निकालने चाहिए। सबको सावधान होना चाहिए, कहीं लापरवाही की बातचीत से निकट सूक्ष्म घड़ी के आने से पूर्व, जिसमें लोगों की आत्माओं की परीक्षा की जाएगी, संकट का समय न वे आए। हमें स्मरण रखना चाहिए कि संसार हमारा अनुमान हमारी स्थिति से लगाएगा। जो लोग मसीह के प्रतिनिधि हैं उन्हें खबरदार होना चाहिए कि वे अपने चरित्र का अनुचित प्रदर्शन न करें। हमारे सामने क्लेश के आने से पहले हमें ये निश्चय कर लेना चाहिए कि पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उंडेला गया है। जब ये हो चुके तो हम एक निश्चित संदेश देंगे जो निंदा करने वाला न होगा, जैसा कुछ लोग पहले दे रहे थे, और विश्वासी अपने विरोधियों के त्राण के लिए अधिक उत्साह प्रकट करेंगे। परमेश्वर ही को अधिकार वालों और सरकारों को दोष लगाने दीजिए। प्रेम के साथ विश्वस्त पहरुओं की भांति हम मसीही के सिद्धांतों को सुरक्षित रखें। रविवार संबंधी कानून। धार्मिक शक्तियां इकरार से तो स्वर्ग से संबंधित और मेमने के से गुण रखने का दावा करती हैं, पर अपनी कृतियों से प्रदर्शित करती हैं कि उनका हृदय अजगर का है और शैतान द्वारा भरकाते और नियंत्रित की जाती हैं। समय आ रहा है जब परमेश्वर के लोग उपद्रव का हाथ महसूस करेंगे, क्योंकि वे सातवें दिन को पवित्र मानते हैं। शैतान ने सब्बत की तब्दीली अपने मनोरथ को पूरा करने के लिए इस आशा से करवाई कि परमेश्वर की योजना असफल रहे। वो परमेश्वर की आज्ञाओं को संसार में से कम प्रभावशाली बनाने की चेष्टा करता है। वो पाप का पुरुष जिसने समयों तथा व्यवस्थाओं को बदलने को सोचा और जिसने सर्वदा परमेश्वर के लोगों को सताया, ऐसे कानून बनवाएगा जिससे हफ्ते के पहले दिन मानने का हुक्म जारी हो। परंतु परमेश्वर के लोग उसकी आज्ञा मानने पर दृढ़ रहेंगे और परमेश्वर उनके लिए अद्भुत काम करेगा और स्पष्टता से दिखलाएगा कि वो देवताओं का भी परमेश्वर। हफ्ते के पहले दिन मानने का नियम धर्मपतित मसीहत को रचना है। रविवार पोपियत का बालक है और मसीही दुनिया ने इसको परमेश्वर के पवित्र विश्राम दिन से भी उच्चासीन किया है। परमेश्वर के लोगों को किसी दशा में उसकी प्रतिज्ञा न करनी चाहिए, परंतु मैं चाहती हूं कि वे समझें कि वे विरोध करने से परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर रहे हैं, जबकि वो चाहता है कि वे उससे बचे रहें। यों वे द्वेष को ऐसा कष्टदायक बना देते हैं कि सत्य का प्रचार करना असंभव हो जाता है। रविवार के कानून को चुनौती देकर कोई प्रदर्शन न कीजिए। यदि एक स्थान में ऐसा किया जाएगा और आप लज्जित हों, तो वही बात दूसरे स्थान में भी की जाएगी। हम रविवार को ऐसे कार्य करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं जिससे मसीह में वृद्धि होगी। हमें भरसक पूर्ण नम्रता से कार्य करना चाहिए। जब हम रविवार के दिन धार्मिक काम में संलग्न हैं, तो स्वाधीन परमोत्साही जनों का मुंह बंद किया जाएगा, जो सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट लोगों को लज्जित करने से अति प्रसन्न होते थे। जब वे देखेंगे कि हम रविवार के दिन लोगों से भेंट करने और उनको धर्मोपदेश सुनाने में व्यस्त रहते हैं, तो वे जानेंगे कि रविवार संबंधी नियम बनाने से हमारे काम में रोड़ा अटकाना व्यर्थ हैं। रविवार को विभिन्न प्रकार के काम करने में प्रयोग किया जा सकता है, जिससे प्रभु के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। इस दिन में खुले मैदान की सभाएं तथा जो काटेज मीटिंग मोहल्ले की सभाएं बुलाई जा सकती हैं, घर घर की सभाएं की जा सकती हैं। जो लिखने का शौक रखते हैं वे इस दिन में अपने लेख लिख सकते हैं। जब कभी संभव हो रविवार को धार्मिक सभाएं करनी चाहिए। इन सभाओं को अत्यंत चित्ताकर्षक बनाना चाहिए। असली पुनर्जीवन डालने वाले भजन गाइए। त्राणकर्ता के प्रेम की सामर्थ्य और आश्वासन के साथ कीजिए। मद्य निषेध तथा सच्चे मसीही अनुभव पर भाषण दीजिए। इस प्रकार आप काम करना सीखेंगे और बहुत सी आत्माओं तक पहुंच सकेंगे। हमारे स्कूलों के शिक्षक रविवार को धार्मिक कार्य में व्यतीत करें। मुझे आदेश मिला है कि इस प्रकार वे शत्रु के मनोरथ को परास्त करने योग्य होंगे। अध्यापक अपने संग विद्यार्थियों को लेकर सत्य से अपरिचित लोगों के लिए सभाएं करें। इस तरह वे अधिक सफल होंगे। लोगों को सत्य, खरा, वास्तविक सत्य दिया जाना है, परंतु देना है इसको मसीही भावना के साथ। हम तो ऐसे हैं जैसे भेड़ियों के बीच में भेड़े। जो लोग मसीह की खातिर उसकी दी हुई चेतावनियों पर ध्यान न देंगे और धीरज और आत्मनियंत्रण को काम में न लाएंगे, वे मालिक के लिए काम करने के बहुमूल्य अवसरों को गंवा देंगे। परमेश्वर ने अपने लोगों को उसकी व्यवस्था तोड़ने वालों पर दोषारोपण का कार्यभाग नहीं सौंपा है। किसी भी हालत में दूसरी कलीसियाओं पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। हमें जहां तक हो सके बहुत से लोगों के दिमाग से हमारे काम और बाइबल के अनुसार सब्बत के प्रति द्वेष भावना को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए।